हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत ही विशेष वक्ता उपस्थित हैं, हिज ग्रेस सर्व साक्षी प्रभु हरि। आप में से बहुत से वक्त उनसे परिचित होंगे, फिर भी एक संक्षिप्त हम उनका परिचय देना चाहेंगे। प्रभु जी बहुत लंबे अरसे के बाद पंजाबी बाग में आ रहे हैं और इनके हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं। बहुत विशिष्ट वैष्णव है और काफी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभुपाद जी के आंदोलन में कर रहे हैं। ये इन्होंने पिछले 11-12 सालों से बहुत सी पुस्तकों का संकलन और प्रकाशन किया है इतनी कम उम्र में, और परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको उन्होंने पुस्तकों में इन्होंने रूपांतरित किया है, उनका प्रकाशन और उनका संकलन किया है। जैसे कि आपने सुना अमृत तरंगिनी, फ्रीडम बाय सरेंडर, पर्पज ऑफ लाइफ इत्यादि, और साथ ही साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक तुलसी महारानी की महिमा के ऊपर आपको गिफ्ट शॉप में मिलेगी, हरिनाम चिंतामणि। जो ओरिजिनल हरिनाम चिंतामणि है उसका अनुवाद किया, उसका संकलन किया, उसका प्रकाशन किया। और आप जो लोग वैष्णव सॉन्ग्स गाते हैं हिंदी में, वह है वैष्णव पदावली, उसका भी संकलन और प्रकाशन पहुँचे नहीं किया। अधिकतर आजकल प्रभु जी फरीदाबाद मंदिर में हैं और पूरा समय ज़्यादातर पुस्तकों के अनुवाद और उनके संकलन में लगाते हैं, इसलिए इनको कई बार हम इनवाइट करने का प्रयास करें, प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं। हर साल जब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा होती है तो कम से कम एक या दो पुस्तकें ये जरूर रिलीज करते हैं, तो इस साल भी देखते हैं हमारे लिए कौन सा तोहफा लेके आते हैं। तो प्रभु जी बहुत स्कॉलरली हैं, शास्त्रों में बहुत गहरी रुचि है, विशेषकर चैतन्य चरिता में तो चैतन्य भागवत में, और उनका दूसरा विशेष गुण क्या है, बहुत विनम्र और मधुर भाषी। और जितने भी आप भारत के किसी भी कोने में ले जाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितने भी धाम तीर्थ स्थान हैं उन सबकी महिमा का बहुत सुंदर गुणगान करते हैं। तो कभी आपको मौका मिले प्रभु जी के साथ जाने में धाम यात्रा तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से धाम की महिमा का गुणगान करते हैं। तो आज यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं हरि नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए, तो बहुत सुंदर सौभाग्य है हमारा। कृपया करके अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर दें और बहुत ही ध्यान पूर्वक इनसे मुखारविंद से श्रवण करके इनके संग का हम लाभ उठाएं। हरे कृष्ण।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 प्यार संख्या 81 कि बा मंत्र दिला गोसाई कि बा तार जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। शब्दार्थ किबा किस प्रकार का, मंत्र मंत्र दिला आपने दिया है, गोसाई मेरे स्वामी किबा क्या है, तार इसकी बल शक्ति, जपीते जपने से, जपीति जपने से, मंत्र मंत्र करीला मुझे किया है, पागल पागल। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है, हे प्रभु आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है, मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से पागल हो गया हूं। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में प्रार्थना करते हैं, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। हे गोविंद, आपके विरह की अनुभूति करते हुए मुझे एक क्षण भी 12 वर्ष या उससे अधिक लगता है। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा अविरत वर्षा धारा के समान प्रवाहित होती है और आपकी अनुपस्थिति में ये जगत में शून्य ही शून्य अनुभव करता हूँ। भक्त की यही आकांक्षा होती है कि जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो उसके नेत्र सजल हो, उसकी वाणी रुद्ध हो जाए और उसका हृदय धड़कने लगे। भगवान नाम का कीर्तन करने के ये शुभ लक्षण है। भाव शब्द में मनुष्य को गोविंद की उपस्थिति के बिना सारा जगत शून्य लगना चाहिए। ये गोविंद के विरह का लक्षण है। भौतिक जीवन में हम सभी गोविंद से विलग रहकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब मनुष्य को होश आता है तो वो गोविंद से मिलने के लिए इतना आतुर हो उठता है कि उसे गोविंद के बिना सारा जगत शून्य लगता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा। तो ये विशेष वीक चल रहा है, जैसा हम सब परिचित हैं, वर्ल्ड होलीनेस वीक, और सारे स्थानों में सभी मंदिरों में भक्तगण एकत्रित होते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान का ये जो पवित्र नाम है उसकी महिमा की चर्चा करते हैं या उस महिमा को श्रवण करते हैं। तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को या अपने संगियों को भगवान नाम की जो महिमा है वो चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में बहुत अधिक विशद रूप से वर्णित करते हैं। बल्कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक ऐसी वस्तु देने के लिए आए जो भगवान कृष्ण के भंडार ग्रह में सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में वर्णित करते हैं, नाम सम वस्तुनाय कृष्णेर भंडारे, कि यदि कोई कहे कि भगवान कृष्ण के पास सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जो भगवान छुपा के रखते हैं। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं, जो भी हमें मूल्यवान वस्तु होती है वो हम तिजोरी में लॉक करके रखते हैं, बहुत ही अंदर अंदर अंदर। तो उसी प्रकार से गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के निवास स्थल में सबसे जो मूल्यवान वस्तु है वो क्या है, कृष्ण का पवित्र नाम। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नाम सम वस्तु नाय, कि नाम के समान वस्तु भगवान के भंडार ग्रह में कोई और नहीं है। तो उसी वो जो भंडार ग्रह है वो एक समय में बिल्कुल लॉक था, बंद था। किसकी हिम्मत है, किसका कृष्ण का भंडार ग्रह जाकर खोल के उस वस्तु को निकालना और सबको बांटना, तो कौन कर सकता है ये काम। ये काम स्वयं कृष्ण ने ही किया। और वही कृष्णा अपने संगियों के संग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, हाँ, और उस भंडार ग्रह को क्या करते हैं कृष्णदास कविराज तो इतना लिखते हैं कि ये पंच तत्व वास्तव में पागल व्यक्ति हैं। इन पंच तत्वों ने क्या किया, उस भंडार ग्रह के सारे दरवाजे तोड़ दिए और भंडार ग्रह का जो मूल्यवान वस्तु है नाम संकीर्तन उसको उठाया और अपने संग में ले आए और ये जगत में क्या किया, बिना किसी योग्यता को देखते हुए, बिना किसी मूल्य को लेते हुए सारे जगत को बांटने लगे। एक तो केवल बांटा ही नहीं, उन्होंने पहले क्या किया, उसको खुद उसका आस्वादन किया, खुद उसको चखा और सारे जगत को वितरित किया। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में वो परम आचार्य है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान जब देखते हैं कि कलियुगा में साधु गुरु प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, हजारों हजारों साधु गुरु आचार्य मिल सकते हैं लेकिन जिनका हृदय कृष्ण की सेवा से पूरित हो ऐसे व्यक्ति पाना इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है, तो भगवान सोचते क्या करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही एक आचार्य की भूमिका, एक वास्तविक जो भक्त है उसकी भूमिका दिखाने के लिए स्वयं एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर जो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग है, हाँ, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कि जो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग भगवान के नामों का कीर्तन करना, उसकी स्थापना करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस जगत में अवतरित होते हैं। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जिस प्रकार से हमारे आंदोलन का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो भगवत दर्शन मैगजीन है, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक जोर भगवान नाम की कीर्तन में दिया है, और वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की ये डिजायर थे। महाप्रभु की एक में इच्छा क्या थी, एक ही इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की कि हर एक व्यक्ति क्या करे, भगवान के नामों का उच्चारण करे। महाप्रभु कहते थे मेरा सपना सबका जपना, महाप्रभु का एक ही सपना है कि सारे लोग भगवान नाम का उच्चारण करें। इसलिए प्रभुपाद ने इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लिया और अपना पूरा जीवन समर्पित किया इस नाम संकीर्तन की महिमा को स्थापित करने के लिए और सारे जनमानस तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कलियुगा में और कोई उपाय नहीं है। पुराणों में वर्णन आता है कि पृथ्वी के सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए थे और आपस में चर्चा करने लगे कि अभी ये कलयुग आ गया है, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है जो करने मात्र से सारे जगत का, सारे जनमानस का भला हो सकता है। तो ऐसे सारे ऋषि मुनि बहुत लंबे समय तक चर्चा करते रहे लेकिन कोई निष्कर्ष उन्हें नहीं पता हो रहा था। तो उन्होंने सोचा एक ही व्यक्ति ऐसा है जिनके पास हमें जाना चाहिए, और वो कौन है, कृष्ण द्वापायन व्यास। तो ये सारे ऋषि मुनि व्यास देव के पास जाते हैं, और व्यास देव के पास जाते तो देखते व्यास देव तो जल में स्नान करने में मग्न है, लेकिन आज पहली बार विशेष चीज इन सबने देखी थी। क्या देखा था कि ये साधारण रूप से स्नान नहीं कर रहे हैं, व्यास देव स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कलियुग धन्य है, शूद्र ही धन्य है, स्त्रिया ही धन्य है। अभी ये सारे ऋषि मुनियों ने सोचा, हाँ, ये व्यास देव को आज हुआ क्या है कि ये कहते कि शूद्रा ही श्रेष्ठ है, शूद्रा ही धन्य है, हाँ, स्त्रिया ही धन्य है, कलियुगा भी धन्य है। तो ये सबने कहा अभी हम इंतजार करते हैं, और ये तट पर इंतजार कर रहे थे। व्यास देव ने अपना स्नान आदि खत्म करके जब तट पर आए तो इन सबने उनको प्रणाम किया और व्यास देव से कहा कि व्यास देव आपका यह आचरण देखकर हम तो भ्रमित हो रहे हैं। हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या चीज कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है जो करने मात्र से कलयुग के जो जीव है वो सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो व्यासदेव कहते हैं, यत् कृते दश वीरवर्षे त्रेतायाम हयनेन तत् द्वापारे तत्समासेन हि हव रात्रे ने तत्कलो। तो व्यासदेव ने कहा कि जो चीज सत्ययुग में कोई व्यक्ति 10 साल करता है वही चीज त्रेता में 1 साल करने से उसे लाभ मिलता है, और द्वापर में 1 मंथ 1 महीने करने मात्र से। लेकिन कलयुग में क्या है, ही और रात्रेण तत्कलो। कलयुग में तो केवल 1 रात या दिन में करने मात्र से जो फल इन युग में अलग अलग समय में प्राप्त होता था वो केवल 1 दिन या 1 रात्रि में प्राप्त हो सकता है। तो ये पूछते हैं क्या करने मात्र से, तो व्यासदेव कहते हैं भगवान के नामों का कीर्तन। तो वास्तव में इसलिए हमारे आचार्य कलयुग को दोष नहीं देते, बल्कि कलयुग तो दोषों का महासागर है। शुकदेव को समय भागवतम का समापन करते हैं तो वर्णन करते हैं, कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुना। ये आचार्य का लक्षण है, हाँ, कि गुण को देखना। भक्ति सिद्धांत महाराज, हाँ, जब दो भक्तों का लड़ाई हो गया ब्रह्मचारी का, वो उनके पास आ गए और एक कहने लगा, इसमें तो ये ऐसा करता है वैसा करता है, ये दोषों से भरा पड़ा है। भक्ति सिद्धांत महाराज ने सारा सुना, दूसरे को पूछा, चलो इसमें तो बहुत दोष है, मुझे बताओ एक गुण क्या है इसमें। कहता है, हाँ गुरुदेव, ये बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र पहनता है, आश्रम में एक ही ऐसा भक्त है, ये नीट एंड क्लीन रहता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा और गुण, तो और कई सारे गुण उन्हें मिले। तो इस प्रकार से देखें, परीक्षित महाराज ने कलयुग को दंडित करने के लिए अपनी पहली तलवार उठाई थी, लेकिन वहां कांपने लगा कली और कहने लगा, मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, हाँ मुझे भी आपके आपके यहां स्थान प्रदान कीजिए। तो उनको स्थान देते हैं और वो मारने से पहले सोचते हैं, राजा परीक्षित वो सोचते कि अरे ये कली में तो एक गुण है, कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, कि एक गुण अमेजिंग है और वो है कृष्णा कीर्तन। और इसी कारण से आचार्य गण, विशेष रूप से जो गौड़िया आचार्य है, वो इस कलयुग का गुणगान करते हैं और इस कलयुग का नामकरण करते हैं, हाँ उसको एक उपाधि देते हैं और वो कहते हैं धन्य कली। ये कली कैसा है, धन्य है, क्योंकि इसमें नाम संकीर्तन, और विशेष रूप से कौन सा नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी प्राधान्यता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि वास्तव में जो कृष्ण नाम है वो हमारा हमारे जीवन का बहुत बड़ा धन बनाना चाहिए। हाँ, हमारी परंपरा के आचार्यों को हम देखें तो उनसे हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण के भंडार ग्रह में सबसे बड़ा धन नाम संकीर्तन है, तो उसी प्रकार से इस गौड़िया आचार्यों ने भी भगवान के नाम को क्या बनाया, अपने जीवन का सबसे बड़ा धन, क्योंकि ऐसा रत्न है, हाँ, कि ये रत्न हमें कृष्ण प्राप्ति करा सकता है। और ऐसा जो भगवान नाम, रूप गोस्वामी जब नाम तत्व की व्याख्या करते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। अभी नाम में हमें चैतन्य नजर नहीं आता है, नाम में कोई चेतना महसूस नहीं होती है, हाँ अभी हमें नाम एक सर्वसाधारण नाम के भांति हम उसका अनुभव करते हैं। इसलिए पूरे दिन में सबसे जो कठिन समय है एक भक्त के जीवन में, वो मंगल आरती के बाद शुरू होता है और वो खत्म होता है दर्शन आरती के पहले। ऐसे लगता है कि वो समय क्यों मेरे जीवन में आ रहा है, हाँ, बाकी समय में तो हम कूदेंगे, नाचेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन जैसे जब का समय आता है तो लगता है ये पनिशमेंट पीरियड शुरू हो गया। तो वहां दिखा जाता है हमारे चेहरे का हाव भाव, हमारे शारीरिक स्थिति और मन की स्थिति। तो इसलिए हम नाम को क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये तो दंडित, मुझे दंड देने के लिए भगवान नाम है, लेकिन वास्तव में भगवत नाम क्या है? हाँ, चैतन्य रस विग्रह। हम आनंद की अनुभूति करते हैं रस का पान करके, इसलिए तो अलग अलग रसों का भोग करने के लिए हम दौड़ते हैं सुबह से शाम तक। लेकिन वास्तव में आचार्य गण कहते हैं जिस प्रकार से कृष्ण नाम या भगवान रसराज है, उसी प्रकार से भगवान का ये पवित्र नाम क्या है? सारे रसों का आगार है, सारे आनंद का आगार है। ऐसे जो हरि नाम है, जिसको भक्तों ने क्या बनाया है? अपने जीवन का धन बनाया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं तो उस स्थान में मौजूद होता हूं। नारद मुनि भगवान के पास गए, भगवान को कहा कृष्णा आपके बारे में सब लोग मुझे पूछते हैं कि आपका निवास स्थान कहां है, ताकि लोग कुछ ना कुछ आपको भेजना चाहते हैं, आपका एड्रेस क्या हो सकता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां मेरे भक्तगण मेरे नामों का उच्चारण करते हैं वहां मेरा निवास है। बल्कि आदि पुराण में भगवान स्वयं अपने नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन अर्जुन को अपने मुखारविंद से करते हैं, और वो कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति लेटे लेटे मेरा नाम उच्चारण करता है, मैं वहां खड़ा हो जाता हूं और क्या करता हूं? सुनता हूं। अब इस जगत में हम अपना नाम सुनने के लिए कितने व्याकुल होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन माझे। किसके नाम के बिना? कभी कभी हमें लगता है मेरे नाम के बिना। अधिकतर नाम की जब चर्चा होती है तो सारा जो फोकस है वो अपने नाम की ओर जाता है, और पूरा प्रयास करते हैं अपने नाम की महिमा को क्या करने के लिए? स्थापित करने के लिए। तो वहां कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति लेटे हुए नाम लेता है तो मैं खड़ा हो जाता हूं, और कोई व्यक्ति बैठ के नाम लेता है, हाँ तो भगवान कहते हैं, हाँ लेटे हुए नाम लेता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके पास बैठता हूं, और कोई बैठकर नाम लेता है तो मैं खड़े हो जाता हूं तुरंत, और कोई व्यक्ति खड़े होकर नाम लेता है तो भगवान कहते मैं नाचने लगता हूं, और यदि कोई व्यक्ति नाचते हुए नाम संकीर्तन करता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को मैं उसका आलिंगन करता हूं, और आलिंगन करके उसे कहां ले जाता हो? अपने धाम। तो इतनी महिमा भगवत नाम की है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में ये नाम संकीर्तन क्या नहीं हो रहा है, घुस नहीं रहा है। हम तो वैसे आसुर हैं जैसे लंका में रावण के एक संगीत है। कंब रामायण में वर्णन आता है कि ये जो फाइट हो रही थी, मानर सेना और वो आसुरों की सेना, रावण के राक्षस की सेना, तो घमासान लड़ाई हो रही थी। बंदर साइज में छोटे थे लेकिन बड़े बड़े राक्षसों को मार देते थे। उनके पास बल क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हनुमान ने जब सागर को पार किया था और अशोक वाटिका में पहुंचे थे वह सीता महारानी के पास, सीता देवी ने सोचा अरे अरे बंदर जैसे तुम हनुमान छोटे से ही तो हो, इतने बड़े महासागर को पार कैसे कर लिया? कहते हैं एक ही सहारा है। कौन सा? भगवान राम का नाम। जैसे भगवान राम का नाम मैंने उच्चारण किया, ये महासागर का साइज इतना हो गया मानो एक गाय का जो खुर है हम उस कीचड़ में देती है और उसमें जल जितना बैठता है उतना ये सागर का साइज हो गया था। माता सीता फिर उस गोष्पाद उस सागर उस साइज को पार करना सरल है। तो इस प्रकार से जो आसुरों की या राक्षसों की फाइट वानर के साथ हो रही थी, अरे वानर सेना पकड़ पकड़ कर मार रहे थे, हाँ जो राक्षसों को रावण के, अभी उनकी गिनती कम हो रही थी, लोग कम हो रहे थे राक्षस। एक राक्षस बड़ा बुद्धिमान था, कहता है ये तो सीधा राम के भक्त हैं और ये राम नाम उच्चारण करते हैं, राम राम कह के मारते हैं। इसने सोचा कि चलो मैं अपने पूरे शरीर में क्या करता हूं, राम का नाम अंकित कर देता हूं। इन्होंने पूरे शरीर में राम नाम अंकित कर दिया। जैसे हम लिखते ना आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, कहा पीछे डाल देते हैं या आगे डाल देते हैं। टी शर्ट कई बार हरे कृष्ण मंत्र से भरा होता है। तो उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति था, ये आसुर राक्षस, उसने भी सारे शरीर में अपना भर दिया भगवान राम का नाम। और फिर आ गया वो रणांगन में और देखा कि वो सारे वानर सेना भी इनको देख के मार नहीं रहे हैं। उनके प्रभु के नाम पर कौन आसर उठा सकता है, मारेंगे तो किसके ऊपर पड़ेगा, राम नाम के ऊपर। तो उन सब उसको मार नहीं रहे थे, इसका लाभ उठाकर उसने कई वानर सेना को मारना शुरू कर दिया। अभी ये हनुमान जी भी चकित हो गए और ये न्यूज पहुंचा भगवान राम के पास। भगवान राम कहते अभी तो समस्या है मेरे पास। भगवान भी सलाह लेने के बाद ये किसके पास पहुंचते हैं, भक्त के पास, विभीषण के पास गए। कृष्णा स्वयं उद्धव से सलाह लेते हैं। तो उसी प्रकार से राम विभीषण के पास जाते हैं और विभीषण तो सबसे चतुर भक्त हैं। हमें भक्तों के संग में भक्ति करने के लिए इतनी अड़चने हैं, आश्रम में रहते हुए इतनी समस्या होती है भक्ति करने के लिए। और वो तो रावण के आश्रम में रह रहा था वहां, और वहां भी वो भगवत भक्ति का इतना बढ़िया से पालन कर रहा था। आप सबने सुना ही होगा उनके दीवारों में उन्होंने क्या लिखा था, राम राम राम। और ये रावण जी आ गए उनके बड़े भ्राता और उन्होंने पूछा, अरे विभीषण मेरे मेरा खाते हो, मेरे यहां रहते हो, लेकिन गुणगान किसका कर रहे हो, उस राम का। कहते नहीं नहीं क्या है सब लिखा हुआ है। कहते नहीं, आपसे और भाभी ना उनसे बहुत प्रेम है। ये रा का मतलब है रावण और म का मतलब क्या है, मंदोदरी। तो भक्त बड़े चतुर होते हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जय जन भजे कृष्णा से बड़ा चतुर, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर। कि ये भगवान का नाम बहुत मधुर है और इस मधुर नाम को जो भजते हैं वो कृष्ण के भक्त वास्तव में इस संसार में सबसे अधिक क्या है, चतुर है। तो ऐसे ये जो राक्षस है वो घमासान युद्ध करने लगा, वानरों को मारने लगा। तो विभीषण ने राम जी को कहा कि भले ही इसने पूरे शरीर में राम नाम अंकित कर दिया है लेकिन दो स्थान रिक्त है। वो दो स्थान कौन से, उन्होंने कहा, वो कहते हैं एक उसका हृदय और दूसरी उसकी जिह्वा, ये दो स्थान खाली है। भगवान राम गए, देखा कि आसुर बड़ा शक्ति संपन्न आक्रामक होकर आ रहा था और जैसे वो चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला वैसे भगवान राम ने क्या कर दिया, आपने तीर से प्रहार करके उसकी जिह्वा पर बाण चलाया और उसको मार डाला। तो हमारा नाम संकीर्तन या हमारा जो जप है उस आसुर के भांति है। दो चीजें हमेशा खाली रहती हैं, टंग और दूसरी ये जो हृदय है। हाँ हृदय, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे ये गुरुजी ने जब से मंत्र दिया है तब से सब कुछ बदल गया है। हाँ किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। महाप्रभु तो नाम संकीर्तन करके कृष्ण के लिए पागल हो गए थे, इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि उनका पागलपन इतना बढ़ गया कि ये संसार शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, गोविंद के बिना ये सारा जगत महाप्रभु को शून्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन हम भी पागल होते हैं, लेकिन इसलिए कि ये कृष्ण नाम मेरे, ये जपमाला मेरे पीछे क्यों लगी है, ये छूट जाए हाथ से। तो इस प्रकार से जो नाम है वो हमसे हमारे लिए होना बहुत बहुत क्या है, कठिन हो रहा है। लेकिन वास्तव में नाम संकीर्तन संपन्न होता है भक्तों के संग में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यह हमें सुव्यवस्था दी है कि भक्तों के संग में आकर भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए और वास्तव में इस भगवान नाम को हमारा धन बना लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? महाप्रभु किसी कार्य का क्रेडिट स्वयं नहीं लेते। इस संसार में हम छोटा कार्य करते कि नहीं, सबको साइड में डाल देते हैं, लेकिन क्रेडिट किसे चाहिए? मुझे चाहिए, मेरा नाम। लेकिन महाप्रभु कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उनकी ये विशेषता है, महाप्रभु ने जितनी भी शिक्षाएं दी उनको अपने भक्त को बनाया, मुखिया बनाया, उसके माध्यम से सारी शिक्षाएं दी। सारा श्रेय किसी को दिया महाप्रभु चैतन्य ने, तो वो अपने भक्तों को दिया। ये इस आंदोलन की ग्लोरी है। श्रील प्रभुपाद को देखो, चैतन्य महाप्रभु सारे जगत को कृष्ण नाम संकीर्तन से उसी समय डुबा सकते थे, लेकिन श्रेय किसे देना चाहते थे? श्रील प्रभुपाद को। कृष्णदास कविराज कहते हैं, भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता, आपने प्रद्युम्न मिश्रा सहाय श्रोता। जब एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पास गंभीरा में आए प्रद्युम्न मिश्रा, और उन्होंने कहा, हे चैतन्य देव, आज मुझे कृष्ण कथा सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो महाप्रभु कहते हैं, आमे कृष्ण कथा नहीं जाने, ये कृष्ण कथा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसे एक भक्त को जानता हूं जो कृष्ण कथा में दक्ष है, और वो कौन है? रामानंद राय। आप जाओ उनके पास कृष्ण कथा सुनो। रामानंद राय के पास जाकर प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा सुनते हैं, स्वयं महाप्रभु सुनते हैं। गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से भगवत भक्ति की जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, व्याख्या है, उसका वर्णन स्वयं बैठकर सुना है। तो वैसे ही कृष्णदास कविराज कहते हैं, हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। कि हरिदास ठाकुर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु नाम महात्म्य को स्थापित करते हैं, और श्रील सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति के जो सिद्धांत तत्व है उसको वो स्थापित करते हैं। श्री रूप द्वारा ब्रजेर प्रेम रस लीला, के बुझते पार गंभीर चैतन्य रखेला। और ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री रूप गोस्वामी के द्वारा जो प्रेम रस तत्व है उसका वर्णन रूप गोस्वामी के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सारे कार्यों का श्रेय अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, और ये नाम महात्म्य का प्रकाश श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के माध्यम से व्यक्त किया। हरिदास ठाकुर कितने महान आचार्य थे, कितना अनुराग नाम के प्रति। इसको कहते नाम व्रत, भजते माम दृढ़ व्रता। जब उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, एक भक्त हमें प्रसाद सर्विस करते समय चपाती ना दे तो हम इतना खुन्नस खाते उसके प्रति। और यह हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जा रहा था जल्लादों के द्वारा, लेकिन वो क्या कहते हैं, खंड खंड है यदि जाओ मोर प्राण, तबो तना वदने आमे छाड़ी हरि नाम। कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन फिर भी हे कृष्ण, आपका ये जो नाम है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। इसको कहते दृढ़ता, इसको कहते नाम व्रत। और वास्तव में ऐसे बहुत सारे गौड़ीय आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, नाम व्रत को पकड़ा है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने 1905 में जब उनकी आयु 31 साल की थी, नवद्वीप मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थल के सामने कुटिया बनाकर इस आंदोलन का प्रचार करने से पहले शतकोटि नाम यज्ञ किया था। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुटिया बनाकर उसमें रहते थे और दिन में 3 लाख नाम उच्चारण करते थे। लगभग 9 साल और 4 महीने उन्होंने ये नाम व्रत लिया था, और कंटिन्यूअसली जिस माला पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जप किया था शतकोटि नाम, उसी माला पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी ये नाम व्रत किया और बहुत ही बड़ी उनकी ये देन है, ये जो आंदोलन है। इस प्रकार से ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं, हरिदास ठाकुर हैं, हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है विष्णुप्रिया देवी, उनका भी नाम व्रत का वर्णन आता है कि वो नाम चैतन्य महाप्रभु के विरह में विष्णुप्रिया देवी निरंतर नाम संकीर्तन करती थी। दो दो कटोरे ऐसे रखती थी, मिट्टी के बर्तन, एक खाली और एक में चावल के दाने, और ब्रह्म मुहूर्त से नाम जप करने के लिए लगते थे। दो अलग अलग वर्णन आता है ग्रंथों में, एक में आता है कि एक माला होने के बाद एक चावल का दाना उठाकर इसमें डालते थे, या फिर एक मंत्रा के बाद डालते थे, और निरंतर संध्या तक ऐसा नाम संकीर्तन करती रहती थी प्रतिदिन, और आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। तो इस प्रकार से आचार्य गण कहते हैं कि ऐसे ऐसे महान महान भक्त हैं जिन्होंने वास्तव में नाम व्रत को पकड़ा। और श्रील प्रभुपाद की तो बात ही छोड़ दो, प्रभुपाद अपने एक पोयम में कहते हैं, भक्ति नाही ज्ञान नाही, नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक करो। ये उनकी विनम्रता है। प्रभुपाद कहते हैं उस पोयम में कि हे कृष्णा, मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझे ना तो भक्ति है ना ज्ञान है, लेकिन एक चीज को मैंने जरूर पकड़ा है, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वास्तव में ये नाम संकीर्तन या भगवान कृष्ण का ये जो पवित्र नाम है, यही एकमेव आश्रय है, एकमेव शुद्धि करने वाला माध्यम है। इसलिए ये जो नाम व्रत है, हमें भी अपने जीवन में कभी कभी लेते रहना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जो भगवान नाम के प्रति जो अनुराग है वो बढ़ सकता है। इसलिए कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ में कहते हैं कि भक्ति भी दो प्रकार से होती है, एक तो है भक्ति विद नेक्टर और भक्ति विदाउट नेक्टर। हाँ, भक्ति एक होता है भक्ति अमृतमय महसूस होती है, और एक है मरा हुआ भक्तिमय जीवन। वैसे ही नाम भी है, नाम अमृत और नाम मृत। तो हमारे तो सदैव स्थिति मृत में ही रहती है, अमृत का तो अनुभव हम कभी करते हैं या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन आचार्य हैं रूप गोस्वामी कहते हैं हाँ वो अमृत का अनुभव करते हैं। रूप गोस्वामी अपने एक श्लोक में कहते हैं, तुंडे दंड विनिम रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, जो उनका फेमस एक श्लोक है, कि ये जो भगवान नाम इतना अधिक मधुर है कि मुझे लगता है कि मेरे पास लाखों लाखों जीवाएं होनी चाहिए, और जब लाखों जीवा से इस नाम का उच्चारण होगा तो दो कान काफी नहीं है उसको श्रवण करने के लिए, करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, तब वास्तव में नाम रस का मैं आस्वादन कर सकता हूं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी इस श्लोक में वही बात कह रहे हैं। एक प्रकार से वो कह रहे हैं पागल हो रहा हूं, इसका मतलब नाम की जो मधुरता है, नाम का जो स्वीटनेस है, वो अत्यधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अनुभव कर रहे हैं, और वो सोचते भी ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, तो वो कंफर्म करने के लिए अपने गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव कहते भाला है लग, बहुत अच्छा हुआ, ये नाम का तो यही तो फल है, अब मैं तो यही चाहता हूं। प्रभुपाद भी कहते हैं उस तात्पर्य में कि वास्तव में गुरु इतने आनंदित नहीं होते हैं कि कौन कितना धन आदि इकट्ठा कर रहा है, जब वो देखते हैं कि किसी शिष्य का भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में अनुराग विकसित हो रहा है, तो आध्यात्मिक गुरु बहुत अधिक आनंदित होते हैं। तो ये नाम अमृतमय तभी होगा जब हम क्या करेंगे, तीन चीजों पर जोर डालेंगे। एक क्या है? साध्य। हमेशा अपने आप को याद दिलाएंगे साध्य मीन्स मेरा गोल। भगवत भक्ति में आने के बाद कुछ साल बीतने के बाद हम धीरे धीरे मैं भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं दूसरों को प्रचार करने के लिए, उपदेश देते हैं दूसरों को सिखाने के लिए, लेकिन अपने बारे में भूल जाते हैं। सोचते हैं जो भी अभी मैंने अर्जित किया है, ज्ञान है, अनुभव है, वो किसके लिए है? दूसरों के लिए। लेकिन खुद का जो गोल है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए साध्य और दूसरा है साधन। हाँ, साधन क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान का पवित्र नाम। साध्य, साध्य के बारे में अवगत होना चाहिए और साधन के बारे में हमें उचित ज्ञान साधु शास्त्र और गुरु के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। जो साधन हमें साध्य दे सकता है, और तीसरी चीज है साधु। हाँ, जिन साधु से हम वास्तव में साधना सीखते हैं और साध्य के बारे में जानते हैं। इन तीन चीजों को प्रतिदिन हमें याद करना चाहिए या मनन करना चाहिए या फोकस होना चाहिए, तब हम वास्तव में क्या कर सकते हैं, भगवान का जो नाम है वो हमारे लिए धीरे धीरे अमृतमय हो सकता है। और तब हम अनुभव करेंगे कि भगवान कृष्ण का जो नाम है और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तब हम वास्तव में अनुभव करेंगे। और वास्तव में भगवान का नाम बहुत अधिक सामर्थ्यवान है या शक्ति संपन्न है। तो सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में अच्छे चीजों का वर्णन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वास्तव में हमारा जो हरि नाम है वो अमृतमय हो सकता है जब हम ये नाम संकीर्तन या नाम जप में इन छह चीजों पर और छह चीजों पर ध्यान देते हैं। तो हरि भक्ति विलास में एक सेक्शन है जिसको कहते हैं अथा जपे गुनाह, कि जप करने का क्राइटेरिया क्या है, जिसमें एक श्लोक में मंत्रार्णव एक सेक्शन है जिनमें मंत्रों का सही उच्चारण और उनका लाभ का वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी। उसमें एक श्लोक में वो वर्णन करते हैं छह चीजों के बारे में। वो कहते हैं मन संहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम निर्वदो जप संपत्ति हेतवः। तो उसमें सनातन गोस्वामी कहते हैं पहली चीज छह चीजों में यदि वास्तव में नाम में अनुराग या अटेंटिवनेस बढ़ाना है तो वो छह चीजों को हमें सलाह देते हैं। सनातन गोस्वामी पहली चीज कहते हैं मन संहरणम। मन संहरणम का मतलब है मन को वश में करना, हाँ, कंट्रोलिंग द माइंड। तो उसमें वो कहते हैं कि हम भगवान के प्रेम के बारे में नहीं जान सकते या उस पर काम नहीं कर सकते, लेकिन हम जो अटेंशन है उस पर जरूर काम कर सकते हैं। तो जब हमारे नाम लेते हैं तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो मन है भगवान के नामों में बना रहे। बल्कि हमें इतना गंभीर होना चाहिए, हाँ, जिस प्रकार से वर्णन आता है अकबर बहुत अपने कार्यों में इतना परेशान हो गया बहुत सारे राजपाट आदि कार्य करके, और लेकिन एक बार उसको लगा कि अभी कुछ कार्य नहीं, अभी मैं शांति चाहता हूं, एकांत चाहता हूं। वो एक मस्जिद में जाता है, बैठता है अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ और सिक्योरिटीज को खड़ा कर देता है डोर पर और एक कुरान लेकर पढ़ता रहता है। और उसी समय एक युवती जो लड़की है वो दौड़ते हुए वहां आती है पागल के भांति, यहां वहां देखते हुए है मानो वो पागल हो गई है किसी के लिए। और वो ऐसे दौड़ते दौड़ते आ गई, उसने देखा भी नहीं कि अकबर है, कौन है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर पाव डाल के चढ़ के दौड़ के वही चली गई ऐसे आगे मस्जिद में। तो उस समय इसको गुस्सा आ गया अकबर को, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह को पुकार रहा हूं और ये बीच में कहां से टपक पड़ी, अभी उसको पकड़ता हूं। गार्ड्स ने उसको पकड़ा, उस लड़की को लाके सामने खड़ा कर दिया। अकबर कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या, यह कुरान पढ़ रहा था, हाँ, और मेरे ऊपर पाव दिया चढ़ के वहां दौड़ रही हो। तो उसने कहा, अकबर ने पूछा क्या हो गया तुम्हारे साथ ऐसा, उसने कहा मुझे पता चला है कि मैं जिनसे प्रेम करती हूं, मेरा जो प्रेमी है वो यहां यहां ही किसी स्थान में आया हुआ है, उसके लिए मेरा हृदय व्याकुल हो गया है, उसके लिए मिलने, उसको मिलने के लिए पागल हो गई हूं, और वास्तव में मुझे महसूस हो रहा है शून्यायतम जगत सर्वम, और उसके लिए मैं दौड़ रही हूं। तो उसने कहा तुम्हें मैं दंडित करूंगा, बड़ी रस्सी, बड़ा रस्सी लाकर गले में बांध के, ताकि तुम धीरे 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 मरोगी। तो उसने कहा ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा उस लड़के ने कि आप क्या कर रहे थे? मैं तो जो परम अल्लाह है उसको पुकार रहा था, बाइबल, ये बाइबल नहीं, कुरान का अध्ययन कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था। तो बल्कि उसने कहा आपको तो मुझसे अधिक एकाग्र होना चाहिए था, आप कहां ध्यान इधर उधर मेरी ओर भटका रहे थे। हाँ, तो इसलिए वो कहती है अभी मैं मरने के लिए तैयार हूं। हाँ, जो अकबर है और शर्म के मारे पानी पानी हो गए, उसने कहा हाँ तुम जल्दी जाओ अभी यहां से। हाँ, तो वो समझ गए कि वास्तव में कि वो एक सिंपल सी जो एक लड़की है, सर्वसाधारण व्यक्ति के प्रेम के लिए इतनी पागल हो सकती है। तो परम भगवान कृष्ण के लिए एक जो भक्त है, एक साधक है, उसको कैसे अप्रोच रखना चाहिए, कैसे उनके लिए उसको होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण हमेशा उस पर इस पर जोर देते हैं कि क्या करना चाहिए, हमें अपने मन, जो पागल मन दौड़ रहा है उसको पकड़ के लाओ और श्री हरि नाम में लगाओ, भगवान के नामों में मग्न कराओ। हाँ, लेकिन इसके क्या है, इसलिए सनातन गोस्वामी फिर दूसरी चीज कहते हैं, वो कहते हैं शौचम। शौचम का मतलब है प्योरिटी, हाँ, पवित्रता या क्लीनलीनेस। दो प्रकार का शौचम का वर्णन हम सुनते हैं, एक आंतरिक सफाई और एक बाह्य सफाई। हाँ, तो दोनों चीजें आवश्यक हैं। हाँ, प्रभुपाद जैसे मायापुर में जा रहे थे और देखा ब्रह्मचर्य आश्रम खुला था गेट, प्रभुपाद अपने शिष्यों के सुबह सुबह चल रहे थे, आश्रम का गेट ऐसे खुला था, ब्रह्मचारी कुछ अंदर थे और प्रभुपाद ने देखा कि बहुत गंदगी पड़ी है, कपड़े यहां फैले हैं, झाड़ू नहीं लगाया, सफाई नहीं। प्रभुपाद ने अपना स्टिक उठाया और कहा ब्रह्मचारी मीन्स अनक्लीन, जोर से बोला कलियुगा में। तो फिर प्रभुपाद वहां से आगे जाते हैं और वहां मायापुर में जो पुराना प्रसादम हॉल है, तो वहां सीढ़ियों में देखा कि सारा सीढ़िया जो प्रसाद पूरे दिन बट रहा था, सीढ़िया वैसी गंदी थे। प्रभुपाद ने कहा यह गंदगी इसलिए है क्योंकि ये लोग ठीक से जप नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा जाओ उनको पकड़ के लाओ टेंपल हॉल से, और ये जो हॉल है, हाँ, ये जो बाहर का भाग है उसको साफ कराओ। तो इस प्रकार से नाम या हरि नाम से संबंध हमारे शौचम का भी है, आंतरिक क्लीनलीनेस और बाह्य क्लीनलीनेस। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, हाँ, कि हमें आंतरिक सफाई निरंतर करनी चाहिए, कैसे, जो विधि विधान है, हाँ, उनका पालन करना चाहिए, 16 मालाओं का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और जो भी हमें सेवा प्रदान की गई है उसको गंभीरता से करना। तो ऐसे सनातन गोस्वामी तीसरी चीज कहते हैं मौनम। मौनम का मतलब है कि हम हमेशा, हाँ, प्रजल पासे निंदा आदि से, हाँ, बच के रहे। हाँ, सबसे बड़ा जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमारे जपा पर होता है वो इसका है, जब हम किसी भक्त की निंदा करते हैं वो सबसे भयावह प्रभाव हमारे नाम जप पर होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें इससे सावधान होना चाहिए, और सनातन गोस्वामी कहते हैं चौथी चीज मंत्रार्थ चिंतनम, कि मंत्र के अर्थ का चिंतन। प्रभुपाद ने कई अपने प्रवचनों में या लेखन में दिया है सरल अर्थ कि हे कृष्ण आप मुझे स्वीकार करो। जब वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्होंने कहा मैं भागवत के ऊपर टीकाएं लिखी है, आप सुनिए। महाप्रभु ने कहा मैं तो इतना जानता नहीं हूं, तो उन्होंने कहा मैं तो यही बस नाम करता रहता हूं। तो वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, नाम की व्याख्या भी मैंने की है, नाम के बहुत सारे अर्थ। महाप्रभु कहते हैं कृष्णा मेर बहु अर्थ नामानी, श्याम सुंदर यशोदा नंदन यही मात्र जाने, मैं तो ये सरल अर्थ से ज्ञात हूं। तो प्रभुपाद ने भी सरल अर्थ हमें प्रदान किया है कि हे कृष्णा आप मुझे अपनी सेवा प्रदान कीजिए, या आप मुझे क्या करो स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी हमें बताते हैं हाँ कि ये एक चीज है कि नाम हाँ उन्नति के लिए। और वो पांचवी चीज कहते हैं अव्यग्रत्वम, मतलब बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। हम सोचते शुरू करने से पहले सोचते कब खत्म होगा, जब शुरू होने से पहले सोचते कि 16 जो गिनने की जो मन के हैं वो नीचे चले जाए, हाँ तो उसमें इतनी आवश्यकता नहीं है हड़बड़ी मचाने की। ये भी सोचना नहीं कि मुझे जब जब करते सोचते जब इसलिए खत्म करना है प्रसाद लेना है, प्रसाद खत्म हो जाएगा इसलिए जब खत्म करना है। हाँ जैसे श्यामानंद पंडित ने एक राजा को भक्त बनाया था, उसके राज्य में हर एक को 64 मालाएं जप करनी पड़ती थी, और जो जप नहीं करेगा उसको राज्य से बाहर। तो बेचारे किसान भी इसलिए जप करते थे कि नहीं तो राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए कैसे ना कैसे हाल जोते हुए जैसे मर्जी बस 64 माला खत्म करनी है, नहीं तो राज्य भय के कारण कर रहे थे। तो कहते हैं कि इस प्रकार से हाँ जप करने की आवश्यकता नहीं है। और निर्वधो, निर्वधो का मतलब हमारा इगरनेस शो करना है कि मुझे क्या करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करना है और ऐसे नाम के लिए प्रयासरत रहना है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि हमें रोज दो चीजों का स्मरण रखना चाहिए, एक है मृत्यु और दूसरा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम मृत्यु का स्मरण करेंगे तो हमें हमेशा प्रतिदिन लगेगा मेरे पास समय कम है, आज जितना अधिक हो सके अपने मन और हृदय को नाम में डालना है, हाँ तो हम फिर गंभीरता से नाम को लेंगे। और जब हरि नाम को हम लेंगे प्रतिदिन तो मृत्यु का भय हमें नहीं लगेगा। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं दो आंखें हैं और दो चीजें सामने रखो, एक नाम और दूसरा है मृत्यु। इसलिए जगदानंद पंडित अपना ग्रंथ प्रेम विवर्त में कहते हैं साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जीने तैयार कौन वस्तु नाय। यदि कोई कहे कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, हम तो कई सारे अपने डिमांड सामने रख सकते हैं, लेकिन जगदानंद पंडित जो महाप्रभु की प्रमुख संगीत है हाँ तो वो कहते हैं मुझे तो बस यही चीज चाहिए, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, हाँ मुझे तो भगवान का नाम साधु संग में लेना है यही मुझे चाहिए, साधु संग और कृष्ण नाम संकीर्तन। संसार जिने तैयार कौन वस्तु ना है, इस संसार को पार करने के लिए और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हाँ ये देन श्री चैतन्य महाप्रभु की है। और चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन क्या है, मुझे कभी कभी मैं सोचता हूं कि वास्तव में नाम तो है ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन उनके उदार हृदय वाले भक्त है। वास्तव में ऐसे उदार हृदय वाले भक्त नहीं होते तो ये नाम हमारे तक नहीं पहुंचता, ऐसे नाम की महिमा से हम अवगत नहीं होते। ये जो परंपरा के आचार्य हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की इतनी मूल्यवान देन है जिसकी तुलना हम किसी चीज से नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु स्वयं अश्रुपात करते हैं जब इस संसार से उनका कोई भक्त चला जाता है। हाँ जैसे हरिदास ठाकुर, जब हरिदास ठाकुर का अंतिम प्रयाण आ रहा था हो रहा था तो महाप्रभु रोने लगे, चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि रत्न शून्य हैल मेदिनी, कि ये जो पृथ्वी है वो रत्न से विहीन हो गई है। लेकिन हरिदास ठाकुर की विनम्रता क्या है, वो कहते हैं महाप्रभु आपके पास तो बड़े बड़े भक्त हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी योग्यताएं हैं, बड़ी बड़ी वे सेवाएं कर सकते हैं, मेरे जैसा तुच्छ भक्त एक चींटी के समान हो, इस संसार में एक चींटी पिप्पली का चींटी मर जाती है तो कौन इतना सोचता है। हाँ, ऐसी उनकी विनम्रता थी। और ऐसे विनम्रता की भावना जब हृदय में होती है तब वास्तव में व्यक्ति कीर्तनीय सदाहरि हो सकता है। तो ऐसे महाप्रभु की मूल्यवान देह उनके उदार हृदय वाले भक्त हैं, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अवनिर सुसंपद ठाकुर वैष्णव गण अवनिर सुसंपद। अपने गीत में कहते हैं कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी संपदा कोई है तो वैष्णव भक्त है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो नाम महिमा से हमें पर्सनली अवगत होना चाहिए, हाँ, ताकि धीरे धीरे एक दिन ये जो नाम है हम सही मायने में सही रूप में ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि नाम से धाम यात्रा है, हम बीच में काम आ जाता है, नाम काम धाम। नाम लेंगे तो काम को हटा देंगे और सीधा कहा धाम। प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद हाँ जो शुद्ध भक्त तो सदैव कीर्तनीय सदाहरि होते हैं, मैं आपको देखता हूं इतनी सारी चीजों में आप इन्वॉल्व रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा आपको सुनना है तो कहां कान लगाओ, मेरे पीठ में कान लगाओ, वहां क्या सुनाई देगा तुम्हें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद के गॉड ब्रदर थे कृष्णदास बाबा जी, वो भी जब बीमार हो गए प्रभुपाद डिसाइपल्स उनकी केयर करते थे। हाँ, तो जब उनका वो जब बीमार थे तो स्टेथोस्कोप से उनको जब चेक कर रहे थे दो डॉक्टर डिवोटी, तो देखा कि अरे उसमें आवाज आ रही है हरे कृष्णा वृंदावन में। उनको लगा कि वृंदावन में तो वैसे लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, दूर कहां से आवाज आ रही होगी। फिर से उनके छाती में लगाया, हाँ, तो पता चला कि आवाज कहां से आ रही है, उनके हृदय से आ रही है। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं। कुछ साल पहले मैं कनाई नटशाला गया था, वहां तो वहां इस्कॉन को वो प्लेस मिला है जहां चैतन्य महाप्रभु गए थे, बहुत सुंदर स्थान है, वहां तमाल वृक्ष है जहां चैतन्य महाप्रभु राम केले के बाद वहां आए थे और उसका आलिंगन किया था। तो वो स्थान पहले एक वैष्णव डिवोटी के पास था, एक बाबा जी वहां रहते थे। तो वो वहां के जो इस्कॉन डिवोटी है वो बता रहे थे कि वो बाबा जी जो भक्त थे इतना हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे दिन रात कि एक बार सांप ने उनको काट लिया। सबको लगा भाई बाबा जी मरेंगे, लेकिन कौन मरा, सांप ही मर गया। ऐसे वर्णन सीसी में भी आता है, महाप्रभु के एक भक्त थे गरुड़दास ऐसे कुछ था उनका नाम। तो इस प्रकार से ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। तो ऐसा ये भगवान नाम बहुत बहुत मूल्यवान देन है श्रील प्रभुपाद की, और इस धरोहर को हमें अपने पर्सनल जीवन में धारण करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, दूसरों को ये नाम रूपी जो अमृत फल है, हाँ, इसको बांटना चाहिए। जितना इस फल को बांटोगे उतना इस नामामृत का हम क्या करेंगे, आस्वादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए राजा कुलशेखर भगवान से एक प्रार्थना करते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में। पहले श्लोक में भगवान से कोई चीज नहीं मांगते, भगवान से कहते एक ही चीज मेरे जीवन में चाहिए, और वो क्या, वो कहते हैं श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति बवलुंठन को विदेति नातेति नागशयनेति जगन्निवास आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मा मुकुंदः। कि हे मुकुंद मुझे ऐसा बनाओ कि मैं प्रतिदिनम आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मा मुकुंदा। कि हे मुकुंद प्रतिदिन मैं आपके नामों का क्या कर सकूं, आलाप गाते रहो मेरे जीवा से। हे वल्लभ, हे वर देने वाले दयालु कृष्णा, भक्त प्रियति आदि 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 नामों का वो वर्णन करते हैं। तो एक भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है और यही वास्तव में हमारे जीवन का गोल है कि निरंतर हमारे जीवा से कृष्ण का हम क्या कर सके, गुणगान कर सके। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत धन्यवाद आभारी हूँ रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का कि उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। मुझे बहुत डर लग रहा था, इतने सारे स्टॉलवर्ट डिवोटीज हैं जो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं और नाम की महिमा से परिचित हैं, लेकिन मैं अपने शुद्धि हेतु हाँ वर्णन कर पाया। हरे कृष्णा। नाम संकीर्तन के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।
सर्व साक्षी प्रभु की।